नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, आपका स्वागत है।
धन्यवाद शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में हरजिंदर कौर ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीत करके ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के कुल मिलाकर पदकों की संख्या 17 रही।
भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा। आज खेले गए फाइनल मुकाबलों में 64 किलोग्राम वर्ग में राखी ने उज्बेकिस्तान की रुखशोन बोनू अहदोवा को और 57 किलोग्राम वर्ग में नव्या ने जापान की सारा कोनो को 4-0 से हरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। लड़कियों में ही 48 किलोग्राम वर्ग में खुशी चंद, 63 किलो वर्ग में दिया, 70 किलो वर्ग में हिमांशी, 75 किलोग्राम वर्ग में ज्योति, 80 किलोग्राम वर्ग में वंशिका और 80 किलोग्राम से अधिक वर्ग में गुरसीरत कौर ने रजत पदक जीता। लड़कों के वर्ग में एकमात्र फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी लक्ष्य फोगाट ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। ताशकंद में भारतीय मुक्केबाजों का ये कीर्तिमान अभियान भारतीय बॉक्सिंग इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
सचिन, भारतीय बॉक्सिंग का एक स्वर्णिम अध्याय कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में पदक जीते हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि विजेंद्र ने जो मशाल 2008 में जलाई थी
जी,
जिसको मैरीकॉम लंबे समय तक लेके चली, आज भारत के युवा खिलाड़ी अंडर 15 अंडर 17 वर्ग में उसको धारण करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं?
हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि क्योंकि देखिए ओलंपिक में पदक पहला उन्होंने दिलाया था, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो डिंकू सिंह जैसे बॉक्सर भी थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत सफलताएं, एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आए थे, बहुत लंबे समय बाद वो जीते थे, कॉमनवेल्थ में भी अच्छा प्रदर्शन किया कुछ मुक्केबाजों ने लगातार, तो वहाँ से एक परंपरा कह सकते हैं कि, और ये पहले से चली आ रही है। कौर सिंह 1982 एशियाड में गोल्ड मेडल जीते थे, उससे पहले हवा सिंह हुआ करते थे, तो ये सब हरियाणा के ही ज्यादातर, डिंको को अगर हम छोड़ दें वो मणिपुरी थे, तो हरियाणा एक तरीके से नर्सरी बनी शक्ति बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि वहीं से ज्यादातर हमारे मुक्केबाज निकले हैं जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छाप छोड़ी है। तो और इसके अलावा जब हरियाणा से निकलने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सफलताएं मिलने लगी तो बाकी राज्यों में भी उसका असर देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी उस तरीके की चीजें देखने को मिली। तो लगातार जो है, जैसे लवलीना वगैरह जहां से निकल के आई, असम से आए कोई, मणिपुर से बॉक्सर हैं, मैरीकॉम का आपने जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि नई पौध से ही आगे हमें बड़े मंच पे जो है खिलाड़ी मिलेंगे, और अगर अंडर 15 में 27, अंडर 17 में 17 इस तरीके के पदकों का अगर जखीरा ला रहे हैं हमारे नए नवोदित नई पौध, और अभी अंडर 19 स्तर पे अब प्रतियोगिताएं होंगी, तो यही अच्छी चीज़ है, सकारात्मक, बहुत सकारात्मक है ये, क्योंकि यही तो आगे चल के ध्वजवाहक बनेंगे हमारे जो असली
जो हमारी कतारों के ध्वजवाहक बनते नजर आएंगे यही खिलाड़ी आने वाले समय में। और सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने वुशु के खेल में भी अपना शानदार दबदबा दिखाया है। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में 3रे स्थान पर रहा।
अपर्णा दहिया और शिवानी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने मकाओ में अपनी शानदार स्किल और काउंटर अटैक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एक यादगार अभियान का समापन किया। अपर्णा दहिया ने महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में वियतनाम की मौजूदा विश्व चैंपियन थी फुओंग को सीधे सेटों में हराकर ये कीर्तिमान अपने नाम किया। महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में शिवानी ने अपनी रूस की प्रतिद्वंदी के सामने सांडा कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या को दोगुना कर दिया। अपर्णा और शिवानी ने पिछले वर्ष ब्राजील में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। पुरुषों की 48 किलोग्राम श्रेणी में कुशल कुमार ने रजत पदक हासिल किया। करीना और सागर दहिया ने एक एक कांस्य पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या को 5 कर दिया। मकाओ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 21 देशों और क्षेत्रों के कुल 110 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
सचिन, भारत ने 5 पदक जीते, 3 पदक भारत के लिए बेटियां लेकर आई। मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा शिवानी की, बीएसएफ में कांस्टेबल हैं
जी।
लास्ट ईयर सिल्वर जीती थी, अपर्णा भी सिल्वर जीती थी, और इस बार देखिए कि दोनों ने एक साथ पदक की चमक को बढ़ा दिया।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अगर कोई अपने पदक का रंग बदलता है खिलाड़ी, तो ये एक बड़ी सफलता है। रजत से आप स्वर्ण पदक पे अपने उसको ला रहे हैं प्रदर्शन को, और अब ये जिस तरीके से हम पहले 19 में प्रवीण कुमार थे, एक सांडा खिलाड़ी जिनको हम जानते थे कि वो पहले खिलाड़ी भारत के हैं जिन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब लड़कियां भी उनके पद चिन्हों पर चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा, और ये बहुत कोई पुराना खेल भी नहीं है भारत के लिए। वुशु मात्र 3 दशक पहले इसकी यहाँ शुरुआत हुई, और शुरुआत में तो एसोसिएशन लखनऊ से ही इसकी चलती थी जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि ये तत्व थोड़ा बहुत फेर बदल के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उन लोग इस एसोसिएशन ने बहुत प्रयास किया भारत में इसकी जमे जड़। हालांकि अभी ओलंपिक खेल नहीं है शक्ति
जी, बिल्कुल,
लेकिन जिस स्तर पर भी अभी खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और 5 पदक लाना लड़कियों द्वारा, सारे पदक जीतना, ये एक बड़ी उपलब्धि है
जी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 96 किलोग्राम का वजन उठा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो आज कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने वजन उठाया भी है, वजन दिखाया भी है, और हर क्षेत्र में जहाँ पर भी बल प्रयोग हो सकता है भारत ने भरपूर मेडलों की संख्या बढ़ाई।
देखिए, इसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन चल ही रहा है। शुरुआत लड़कियों ने की, फिर कल का दिन एक पुरुष खिलाड़ी के नाम रहा, आज फिर हरजिंदर निकल के आई हैं मेडल विनर के तौर पे। और हरजिंदर का अभी पिछला रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने बर्मिंगम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वे एक बड़ा कंपटीशन होता है चूंकि, तो उसमें कॉमन वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लाना एक बड़ी सफलता है। और पिछले साल ही उन्होंने अहमदाबाद 2025 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी मेडल जीता था
जी।
तो अपने प्रदर्शन को हालांकि अभी ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर नहीं ले जा पा रही हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है कि 25 में भी जीता और 26 में भी जीत रही हैं, तो एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि भारोत्तोलकों के लिए बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ी अलग तरीके की। आपने देखा ही होगा कल भी जो अजीत जीते थे वो मात्र 1 किलोग्राम वर्ग से उन्होंने किसी खिलाड़ी को 4th नंबर पे छोड़ा था और ब्रॉन्ज मेडल पोडियम पे आने में। तो ये बड़ा बड़ा कठिन खेल है ये, कि आप 1-1 किलो किस तरीके से अपने वजन को बढ़ाते हैं, और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है
जी। बिल्कुल, तो बहुत सारी इंजरीज के बीच में
बहुत मुश्किल खेल है ये
जी। बिल्कुल, और 1-1 किलो वजन बढ़ाने में लंबा समय लगता है, लंबी प्रैक्टिस लगती है, और कहीं आपका एज ग्रुप बदल गया तो फिर आपको नई चुनौतियां नए सिरे से।
हाँ बिल्कुल, बहुत चुनौतियां इस खेल में।
आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की।
धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में कल वापस जीत की पटरी पर लौटने की उम्मीद लिए पंजाब किंग्स का सामना हुआ प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम से। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने टीम के लिए 35 गेंद में सर्वाधिक 57 रन बनाए। अजमतुल्ला उमरजाई ने भी 17 गेंद में 38 रन का अहम योगदान दिया। MI की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ने शुरुआत से ही सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने 39 गेंद में टीम के लिए 61 रन जोड़े। रिकल्टन 23 गेंद में 48 रन और रोहित 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए 33 गेंदों में शानदार 75 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं टीम के लिए बचा हुआ काम विल जैक्स की 10 गेंदों में 25 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी ने कर दिया। अजमतुल्ला उमरजाई ने पंजाब के लिए 2 विकेट भी लिए। सीजन की शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब की ये लगातार 5वीं हार है, जिसने उसके लिए प्लेऑफ की दौड़ को थोड़ा और मुश्किल कर दिया है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
सचिन, जिस तरह की शुरुआत पंजाब की इस सीजन में हुई थी, फेवरेट्स थी, अभी भी काफी हद तक फेवरेट्स है, और इतनी फेवरेट्स है कि लगातार 5 मैच हारने के बाद भी चौथे नंबर से कोई हिला नहीं पाया है, लेकिन क्या हो गया इस टीम की फॉर्म को?
देखिए, स्कोर तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक था, 200 रन कोई कम नहीं होते हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है इस टीम के लिए। इस सत्र में उन्होंने 8वीं बार ऐसा हुआ है कि 200 रन का स्कोर जो है टांगा है, और इससे पहले और पिछले साल भी उन्होंने ये इस तरीके का कर दिखाया था। सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो उनके बराबर ठहरती हैं, लेकिन इसका वो बचाव नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि तिलक वर्मा जिस अंदाज में खेले हैं, मात्र 33 गेंदों पर उन्होंने 75 रन बनाए, और ये उनका पहला अर्धशतक है इस सत्र में 10 पारियों में, तो वो जिस तरीके से आड़े आ गए पंजाब के, वो कहा जा सकता है। प्रभ सिमरन की बल्लेबाजी अच्छी थी, उनको 2 कैच भी उनके ड्रॉप हुए और बहुत जल्दी जल्दी उनको जीवनदान ये मिले, लेकिन उसका वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, ये आप कह सकते हैं कि अगर वो 57 रन से कहीं बड़ी पारी खेलने में सफल होते तो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से बीच में मैच थोड़ा सा गेंदबाजों ने अपने कब्जे में लिया, एक ये भी वजह हो सकती है कि बहुत अच्छा का औसत चल रहा था, वो 200 प्लस जा रहे थे, जा भी सकते थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट जिस अंदाज में लिए, उससे मैच कहीं ना कहीं पंजाब के हाथ से निकलता तो नहीं। अब ये तो 200 रन तो पर्याप्त थे, फिसलता इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जब मुंबई इंडियंस खेल ली तिलक वर्मा की वो इतनी बड़ी पारी आ गई, तो उसके बाद इसको माना जा सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, शार्दुल ठाकुर उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं पंजाब के, लेकिन अब ये है कि इनके लिए करो मरो की स्थिति तो जरूर है, लेकिन टीम बहुत ही मुझे लगता है कि एक हौसले के साथ खेल रही है, जरा भी अपने ऊपर कोई दबाव नहीं आने दे रहे, ना खिलाड़ी ना कोच ना कप्तान, तो अगर उस हौसले के साथ ही उतरते हैं तो मुझे लगता है उसका लाभ इनको मिलेगा जरूर।
जी बिल्कुल, लाभ मिलेगा, लेकिन पंजाब की नजरें आज के मुकाबले पे होंगी, जो कि अगर चेन्नई जीतता है तो शायद इस सीजन में पहली बार पंजाब अपने आप को टॉप 4 के नीचे पाएगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर पड़ सकता है।
जी बिल्कुल, अब पंजाब चाहेगा कि यहाँ से कम कोई गलती को ना दोहराया जाए और वापस अपनी पुरानी लय को।
वही है कि उनके 2 मैच बचे हैं तो उनको दोनों जीत रहे हैं, तो उस अंदाज से उनको खेलना है कि अब ये दोनों ही मैच हमारे लिए क्रूशियल है, हमें जीतने हैं, करो या मरो शब्द मैंने इसीलिए उनके लिए इस्तेमाल किया।
जी बिल्कुल, अब करो या मरो के मुकाबले पंजाब को खेलने होंगे, और जो शीर्ष 2 में पहुंचने की दौड़ थी उसको फिलहाल शीर्ष 4 तक बांधने की कोशिश होगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलाउथ विदित्सन से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को भी महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए खेलों में जो आज एकमात्र बुरी खबर रही वह ये रही कि लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु का अभियान थाईलैंड ओपन में आज समाप्त हो गया।
ये है कि मतलब क्वार्टर फाइनल तक देखिए आए, अब उससे आगे जाने की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि दोनों ही मुकाबले बहुत कड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ थे दोनों के, तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपका कमी रह गई। सिंधु भी लगातार अच्छा कर रही थी इस टूर्नामेंट में, लक्ष्य भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दोनों के जो सामने जो खिलाड़ी थे वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुए, तो वो मौका नहीं मिला उनको, लेकिन ले जाते अगर वो अपने अभियान को और आगे तो और ज़्यादा बेहतर होता।
जी बिल्कुल सचिन, लेकिन भारत की इस ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी पे क्या कहेंगे, जहां पे सात्विक और चिराग हैं, हर कॉम्पिटिशन में भारत को कुछ देते हैं।
वो तो बहुत ज़बरदस्त खेल ही रहे हैं और उनके वजह से देखिए बहुत सफलताएँ भी मिली हैं, और अब जब सिंगल्स में कुछ नहीं इस तरीके के कोई टाइटल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डबल्स में आए कम से कम, क्योंकि जो बैडमिंटन ने जो एक दिशा दिखाई थी जो खिलाड़ियों के लिए, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहनी चाहिए, अगर वो सिंगल्स में नहीं है तो डबल्स में सही।
जी बिल्कुल, डबल्स में उम्मीदों के साथ कल ये टीम सेमीफाइनल खेलने उतरेगी और उम्मीद होगी कि उसको खिताब में बदलने की कोशिश हो। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद सचिन।
धन्यवाद शक्ति।
श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।